नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्र आज संसद आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। 13 दिसंबर 2001 को आज ही के दिन सुरक्षा कर्मियों ने संसद की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और कई सांसदों ने संसद भवन में शहीद सुरक्षा कर्मियों को पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद पर हमले में शहीद हुए बहादुर सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि देश उन सभी वीर जवानों को याद कर रहा है जिन्होंने वर्ष 2001 में संसद पर हुए जघन्य हमले में प्राणों की आहुति दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भीषण खतरे के बीच उनका साहस, सतर्कता और कर्तव्यनिष्ठा सराहनीय थी। देश उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदैव कृतज्ञ रहेगा। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने वर्ष 2001 में संसद में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए सुरक्षा बलों के वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री शाह ने सुरक्षा बलों के उस समय के अदम्य साहस और वीरता को याद किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र उनके बलिदान को सदैव याद रखेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संसद पर कायराना आतंकी हमले के दौरान वीर सुरक्षा बलों ने अटूट सुरक्षा कवच तैयार किया था। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि उनके अदम्य साहस ने आतंकवाद के सभी स्वरूपों को जड़ से उखाड़ फेंकने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता को बल दिया है। डॉ मुरुगन ने कहा कि सुरक्षा बलों के सर्वोच्च बलिदान ने देश के लोकतंत्र और राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा की। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने निर्बाध, कुशल और पारदर्शी उपयोग के लिए कोयला खंडों की नीलामी नीति कोल सेतु को स्वीकृति दे दी है। इससे विभिन्न औद्योगिक उपयोगों और निर्यात के लिए कोयला खंडों की नीलामी के लिए नया माध्यम तैयार हो गया है। इसका उद्देश्य संसाधन की निष्पक्ष उपलब्धता और अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना है। नई दिल्ली में कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि भारत कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया। श्री वैष्णव ने कहा कि जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी।
सेंसस दो फेजेस में होगा। फेज वन में फोकस रहेगा हाउसहोल्ड्स के अंदर क्या एमिनिटीज हैं, हाउसिंग कंडीशन कैसी है, कच्चा घर है, पक्का घर है, घर में कितने रूम्स हैं, किस तरह से घर में कोई व्हीकल है, घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कैसा है। दैट विल बी दी बेस फॉर फेज टू, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोग्राफिक, सोशो कल्चरल एंड इकोनॉमिक पैरामीटर्स का इन्यूमरेशन किया जाएगा पूरी जनसंख्या का।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय की दक्षिण मामलों की सचिव नीना मल्होत्रा ने बताया कि श्री मोदी अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के निमंत्रण पर 15 दिसंबर को जॉर्डन पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री की जॉर्डन की ये पहली यात्रा है। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी 16 दिसंबर को इथियोपिया जाएंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 17 दिसंबर को ओमान जाएंगे। यात्रा के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। निर्वाचन आयोग ने 8 प्रमुख राज्यों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के निगरानी के लिए विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। पर्यवेक्षकों को पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तैनात किया गया है। ये पर्यवेक्षक फरवरी 2026 में अंतिम मतदाता सूचियों के प्रकाशन तक इन राज्यों में उपस्थित रहेंगे। पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया में 58 लाख से अधिक जनगणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। इन मतदाताओं के नाम अस्थायी रूप से मसौदा सूची से हटा दिए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में अब तक 92.41% मतदाता प्रपत्रों का डिजिटलीकरण हो चुका है। मौसम विभाग ने उत्तरी आंध्रिक कर्नाटक में कल तक भीषण शीतलहर का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, दक्षिणी आंध्रिक कर्नाटक और उड़ीसा में आज शीतलहर चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।